वसुधा अभिमन्यु और ऋषिका को लेकर अपने पर्सनल विला में आ चुकी थी। वो बाथरूम का बहाना बनाकर अंदर कमरे में चली गई, जबकि लिविंग रूम में बाहर अभिमन्यु और ऋषिका ही बचे थे। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे, मानो अगर वसुधा नहीं होती तो दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए अभिमन्यु और ऋषिका एक दूसरे के करीब आ गए। ऋषिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु की हाइट उससे काफी ज्यादा थी, जबकि वसुधा ने उसे यही बताया था कि जब वो पैदा हुआ था तो एक कमजोर बच्चा था, अब तो ऐसा कुछ नहीं था। ऋषिका ने मन ही मन कहा, कुछ ज्यादा ही अच्छे से मेंटेन नहीं कर लिया इसने खुद को। दादी ने बताया था कि पैदा हुआ था तब बहुत छोटा और दुबला पतला सा था। इसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि ये कभी छोटा और दुबला पतला रहा होगा। ऋषिका मन ही मन अभिमन्यु की बुराई कर रही थी। तभी अभिमन्यु ने ऋषिका की आंखों में देखते हुए भौंहें उठाकर कहा, किडनैपर कहीं की? ऋषिका को समझ आ गया था अभिमन्यु ने ऐसा क्यों कहा। जब फर्स्ट टाइम ऋषिका ने अभिमन्यु को कॉल किया था तब उसने यही कहा था कि उसने वसुधा को किडनैप कर लिया है। ऋषिका ने सिर हिलाया और जवाब में बोली, अपने बारे में क्या कहना है तुम्हें चीकू? ऋषिका ने चीकू शब्द को कुछ ज्यादा ही जोर देकर बोला। ऋषिका के चीकू कहते ही अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा और बोला, दादी ने तुम्हें ये भी बता दिया? जरूर तुमने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर रही हो तुम मेरी दादी को। ऋषिका ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अभिमन्यु अभी भी उससे गुस्सा था। जब उसने उसे चीकू कहकर बुलाया, अभिमन्यु को और डाउट होने लगा। वो मन ही मन बोला, दादी को चीजें याद नहीं रहती, इसलिए वो इसे अपनी बहू समझ रही है और इसके लिए उनका अटैचमेंट जायज है। पर ये क्यों दादी के लिए इतना काइंड हार्टेड बन रही है? जरूर दादी ने अनजाने में अपनी आइडेंटिटी इसे बता दी होगी और ये उसी का फायदा उठा रही है। ये कोई काइंड किडनैपर नहीं बल्कि बहुत ही शातिर लड़की है, जरूर मेरे बारे में गलत ही सोच रहा होगा, ऋषिका मन ही मन बोली। उसने गहरी सांस ली और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अब जब हम दोनों की आइडेंटिटी एक दूसरे के सामने आ ही गई है तो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। और क्या क्लियर करना है तुम्हें? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर पूछा। यही कि हम दोनों शादीशुदा हैं, ऋषिका ने जवाब दिया। उसने एक बार फिर से वही रट लगा ली थी। अभिमन्यु कड़वाहट से हंसा और बोला, काफी सोच समझकर और दूर की प्लानिंग की है तुमने मिस सिंघानिया। पहले मेरी दादी को किडनैप किया और फिर जब उन्होंने तुम्हें बहू कहा तो तुम एक नकली सर्टिफिकेट के साथ मेरे पास आ गई और मेरी जबरदस्ती की पत्नी बन गई। एक्सक्यूज मी, तुम शायद भूल रहे हो कि दादी मेरे पास बाद में आई थी, उससे पहले मैंने तुम्हें हमारी शादी का सर्टिफिकेट दिखा दिया था, ऋषिका ने अभिमन्यु को उंगली दिखाते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु ने उसकी तरफ गुस्से से घूर कर देखा तो ऋषिका ने अपनी उंगली नीचे कर ली। इस बार वो नरमी से बोली, देखिए मिस्टर राजवंश, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करोगे, अब जब हेल्प करने का मौका आ गया तो आप अपने कदम पीछे ले रहे हैं। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अभिमन्यु ने चिढ़कर पूछा। ऋषिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो जल्दी से बोली, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरे लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर चेक करना कि हम दोनों की शादी सच में हुई है या नहीं। ऋषिका ने फाइनली अभिमन्यु को इस बात के लिए मना ही लिया था कि वो उसके साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाए। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी, दादी के जरिए मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश भी नहीं करोगी। ओके डन, ऋषिका ने मुस्कुराकर कहा। एक पल के लिए अभिमन्यु उसे काफी गौर से देखने लगा। उसकी स्माइल बहुत प्यारी सी थी। अभिमन्यु का बिहेवियर काफी अलग था। वो उन लड़कियों से नफरत करता था जो उसकी अटेंशन पाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती थी। पिछले कुछ दिनों से वो ऋषिका से काफी चिढ़ गया था। अभिमन्यु ने तुरंत ही खुद को नॉर्मल किया और बोला, सोच लेना, अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, फिर तुम दादी के बहाने से भी बच नहीं पाओगी। इतने दिनों तक परेशान करने और मेरा टाइम वेस्ट करने की सजा तुम्हें चुकानी होगी ऋषिका सिंघानिया। अभिमन्यु के बोलते ही तुरंत ही ऋषिका की मुस्कुराहट गायब हो गई। उस दिन उसे वही सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन अगर वो खुद को साबित नहीं कर पाई तो अभिमन्यु फिर उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं था। वो उसकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर सकता था जो पहले से ही आसान नहीं थी। ऋषिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार थी।